أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے آج تھوڑی سی باتیں کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہوں گے اس کورس میں ہم کیا کریں گے کیا سیکھیں گے. تو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ رمضان میں ایک بھرپور طریقے سے قرآن پاک کا سفر پورا کرنے کے بعد اب کیا مزید کچھ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور جو ہم نیا کورس آفر کر رہے ہیں دین و دنیا کے نام پہ, آخر اس کی حکمت کیا ہے اور اس میں کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بہت کچھ. نوٹس لیجئے گا اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ کل آپ کے نام اعمال میں تولا جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا, جس نے ہمیں انسان بنایا, مکمل اعضاء والا بنایا, مسلمان بنایا, باشعور بنایا, قرآن سے محبت کرنے والا بنایا, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر لگا دی. ہم سب اپنے آپ کو جتنی مبارک دے سکیں اس بات پہ دے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا کہ جن کے لیے ہدایت اور اللہ کے راستے پہ چلنے کے اسباب میسر نہیں ہوتے, اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے. لیکن بہت ساری جگہوں سے گزرنے کے بعد کہیں جا کر وہ کسی کنارے پہ لگتے ہیں. ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے, یہ بھی ایک ہمارے لیے پلس پوائنٹ تھا. انہوں نے جو ہماری تربیت کی وہ بھی اسلام کے نام پہ ہی تھی. چلے کچھ کمی بیشی رہ گئی ہوگی, لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنی ہی کوشش پوری کر لی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں سکولز میں ڈالا تو ہمیں استاد ملے, اور 90% ہمارے استاد بھی اسلام سے ہی تعلق جوڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق ہی جینا سکھایا. اتنی حجتیں تمام ہونے کے بعد بھی آج جب ہم قرآن اور سنت کے آئینے کے ساتھ اپنے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں तो बहुत सी कमी है। आपके सामने जो कोर्स है वो दीन और दुनिया दो लफ्ज़ के साथ कोर्स है, और कुरान पाक की आयत के रब्बना आतीना फ़ि दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। ऐन अल्लाह के घर जाकर खाना कबा को बीच में रख के तवाफ़ के दौरान ये दुआ मांगी जाती है। जो साथी नहीं जा चुके अल्लाह उनको ले जाए, और जो जा चुके उनको पता है कि ये दुआ रुकने यवानी से लेकर हजरे अस्वद यानी शुरू में बिल्कुल जो आखिरी ये कोना है उसमें नबी सल्लम मांगा करते थे। और मुझे लगता है कि इंसान की बेबसी की इंतहा और सब कुछ होकर भी पास कुछ ना होने की सबसे बेहतरीन मिसाल खाना काबा में जाकर महसूस होती है। यहाँ आपकी 8 कनाल की कोठी है या 10 कनाल का घर है, आपके पास 100 जोड़ा है या 10 जोड़े हैं, वहाँ सब एक मखसूस लिबास में डाल दिए जाते हैं। औरतों के लिए तो कोई कहत नहीं, लेकिन मर्दों के तो सब कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं, और 2 चादरों में लपेट कर अल्लाह ताला अपने घर के तवाफ़ करवा कर असल में ये सिखाता है कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना और मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। वहाँ जाकर इस चीज़ का इकरार करना और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार का पढ़ना, ये कोई आम बात नहीं है, एक बड़ा अनोखा तजुर्बा है। ये वो तरीक़ाकार है, ये वो चीज़ है कि जिस वक्त इंसान को महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं। और आपने देखा होगा दुनिया में लोग आपकी इज्जतें करें, आपके माल, आपके इल्म, आपके घर बार की वजह से। खाना काबा में जाकर वो कहते हैं ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्यास, आपको कोई ना पहचाने और आपके पाँव के ऊपर पाँव रख के चला जाए, किसी को कोई परवाह भी नहीं होती। अब हज का सीज़न पास है, कुछ लोग जो हैं वो हज की उम्रे की तैयारियों में होंगे। हम सब ने रमज़ान गुजारा, रमज़ान में शैतान जकड़ लिए जाते हैं। कह लीजिए कि इंसान का नेकियों पे कायम रहना निस्बतन आसान हो जाता है आम दिनों की निस्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। मसला कहाँ बढ़ता है जब रमज़ान ख़त्म होता है और ईद के नाम पे कुछ फंक्शंस, और फिर ईद के बाद बहुत ही लंबा चौड़ा सिलसिला शादियों का शुरू होता है, तो उसमें हमें नहीं समझ आता कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये जो कोर्स आपको इस वक्त दीन और दुनिया के नाम पे ऑफ़र किया जा रहा है, असल में ये आपके रमज़ान के बाद भी तकवा की उस कैफियत को कायम रखने की कोशिश है कि जो आपको मुझे इंशाल्लाह अपने नफ्स के शैतान और दूसरी तरफ कह लीजिए कि बाहर के शैतान के हमलों से बचाएगा। देखिए आपने भी देखा होगा कि डाइटिंग करते रहें तो ठीक रहता है वज़न, अगर डाइटिंग करके छोड़ दें तो वेट एकदम गेन होने लगता है। एक्सरसाइज करेंगे बॉडी सही हो जाएगी, एक्सरसाइज छोड़ देंगे बॉडी फिर ख़राब होने लगती है। रमज़ान में हम सब ने बहुत कोशिश की कि हम सबको तकवा मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी। हमने अपनी सी कोशिश से भूख प्यास भी सही, रातों को क़याम भी किए, सदका खैरात किए, जिनको अल्लाह ने मौका दे दिया वो उम्रे पे भी चले गए, और हज का सवाब अल्लाह ने उनका अगर दे दिया हो तो और क्या चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ़ 1 महीने के मुसलमान हैं? क्या मुसलमान होने का मतलब ये है कि हम रमज़ान के रमज़ान खूब कुरान पढ़ें, दौरे कुरान करें और 3 या 4 सपारे जो भी अल्लाह हमें तौफीक दे वो पढ़ लें, और रातों को भी तहज्जुद के साथ हम तरावी भी पढ़ते रहें, और उसके बाद फिर हम जहाँ से आए वहाँ खो गए? ऐसा नहीं है। आप देखिए कि हम सारा साल पीछे फिरते हैं ना कामयाबी के, पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं तो कामयाबी चाहिए, ऐसे ही है ना। अगर हम कमाते हैं कि चलो कुछ घर में पैसे आ जाएंगे तो कामयाबी चाहिए, लेकिन क्या हम ये सब करके अपने आप को मुतमईन पा लेते हैं? नहीं पाते। सूरत बकरा किसी आयत को अगर आप देखें कि रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी हसना दे, व फिल आखिरती हसना और आखिरत में भी हसना दे, और वक़िना अज़ाब अन्नार हमें आग के अजाब से बचाना। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में आपने हसना मांगा, आखिरत में भी हसना मांगा और साथ जहन्नम की आग से बचाव मांगा, ये हसना क्या होता? याद रखिए कि माल हसना नहीं है, औलाद हसना नहीं है, कैरियर हसना नहीं है, बड़ा घर हसना नहीं है, कीमती फ़ोन मिल गया ये हसना नहीं है, गो कि ये हसना बन जाएगा अगर एक चीज़ इसके साथ लगा दें, और वो क्या है? अल्लाह की रज़ा से जो मिले। जुमला लिखिए, दुनिया की हर नेमत जो अल्लाह की रज़ा के साथ मिले वो हसना है, और जिसको पाकर आप दिन ब दिन अल्लाह से राज़ी होते जाएं, शुक्र के जज्बे, एहसान के जज्बे आपके दिल में आते रहें, वो हसना है। ये है वो पर्सनालिटी जिसको रौदियतम मर्दिया कहा जाता है। आज आपने दो चीज़ों का बड़ा प्यारा जोड़ देखना है इंशाल्लाह, कि रब्बना आतीना फ़ित दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ मांगने वाले लोग कैसे दीन दुनिया का बैलेंस रखें, समझ नहीं आते। वो कहते ना कि इमाम मुझे खींचे है, रोके है मुझे कुफर। हम एक तरफ भागते हैं नेकियों की तरफ, तो हमें फिर गुनाहों की भी कुछ ना कुछ मोटिवेशंस मिल जाती हैं। एक तरफ हम दुनिया दुनिया कर रहे होते हैं, तो दुनिया से निकलते हैं तो फिर दीन के कुछ तकाजे हैं। तो इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में हम एक बैलेंस रवैया सीखेंगे। हमारी कोशिशें, हमारी एफर्ट्स और हमारी सारी चीज़ों का एंड रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए। अगर दुनिया की नेमतें नंबर एक अल्लाह की रज़ा से मिलें, और अल्लाह कभी हराम पर राज़ी नहीं होता, ये जुमला आज ही लिख लें। आप कुछ भी ले लें, घर में ले आएँ, आपको मिल जाए, लेकिन अगर वो हराम से मिला ना, तो वो अल्लाह की रज़ा नहीं होगी, वो आजमाइश है। और जिस नेमत को पाकर अब दिन ब दिन अल्लाह के करीब हो जाएं, इंशाल्लाह वो हसना। फिर आप अबू बकर सिद्दीक की तरह करोड़पति भी हो जाएंगे, तो आपका माल आपको बिगाड़ेगा नहीं। और अगर आप अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह एक बड़े बिजनेसमैन, एक ताजिर बन के तिजारत करेंगे, आपकी तिजारत आपको नुकसान नहीं देगी। और इसी तरह से अगर आप मलका आसिया को देख लीजिए, तो बादशाहत और बादशाह की बीवी होना भी आपको नुकसान नहीं देगा, अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ गई कि आप अल्लाह ताला की रज़ा से वो चीज़ें लेते हैं। दूसरी बात है कि जब नेमत मिल जाती है, तो फिर अक्सर लोग अल्लाह से दूर होने लगते हैं। किसी शायर ने कहा कि दुआ बहार की मांगी, तो इतने गुल खिले मेरे आशियाने में, शायद, या मेरे बागीचे में इतने फूल खिल गए कि जब मैंने दुआ की कि अल्लाह मेरे घर में भी बहार आए, इतने फूल खिले कि कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। इस दुनिया का ये हाल है, स्लिपरी रास्ता, और जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, तिलकन रास्ता, पाँव तिलक तिलक जाता है। हम जब दुनिया को पाने के लिए निकलते हैं, चले आप बच्चियां हैं जो आपको, और आप बड़े हैं वो भी मेरे समेत, हम सब ने अपना करियर शुरू किया था ना, चले उस वक़्त तक वो प्रेप वन प्रेप टू नहीं भी कहते थे, तो कच्ची पक्की तो कहते ही थे ना, कच्ची क्लास थे, पक्की क्लास थे, पहली थे, दूजी कहते थे ना। आप देखिए कि जब हम दुनिया में जाते हैं, आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, 3-4 साल की उम्र से उसका एक तालीम का सफ़र शुरू होता है, और कितनी एफर्ट, कितनी मेहनत के बाद वो बच्चा किसी भी प्रोफेशन तक पहुंचता है, चाहे वो एफएससी के बाद मेडिकल लाइन हो, या एफए के बाद वो इंजीनियरिंग लेना चाहे, कुछ भी हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक ज़िंदगी गुजारने का एक स्टाइल बन चुका है। सुबह 7 बजे उठ के सब बच्चे घर से निकलते हैं, तो सबको अजीब नहीं लगता, क्योंकि सब जाते हैं। 3-4 बजे तक बच्चे स्कूलों में रहते हैं, हमें बड़ा ट्रस्ट है कि स्कूल और तालीमी इदारे इस पे बहुत ही यानी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतनी एफर्ट्स होने के बावजूद, हम दुनिया में इतनी भाग दौड़ करने के बावजूद, वो खुशी और वो सुकून नहीं पा रहे जो हमारा हक था? वजह यह है कि दुनिया की नेमतें मिली तो हुई हैं, मिल भी रही हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है। क्योंकि दुनिया में जब अल्लाह ताला नेमतों को हसना बनाकर पेश करता है ना, तो हम अपनी नेमतों को एंजॉय करते हैं। मसलन बच्चों की मिसाल दी है ना, तो बच्चों को तो माँ बाप के पाँव धो के पीने चाहिए। ये एक मुहावरतन भी बात अगर कह दी है तो सुन लीजिए, कम से कम बच्चों को माँ बाप के आगे रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर बीवी सारा दिन घर में इतनी मेहनत करके कई खाने बना बना के शौहर के आगे पेश करे, तो शौहर और बीवी का रिश्ता तो मिसाली होना चाहिए। फिर सारी लव स्टोरियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, रोमियो जूलियट और हीर रांझा और सस्सी पुन्नू, उसकी बजाय आप खुश हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया की हसनक पे बात कर रही हूँ मैं भी। आप अपने आप से पूछिए, चंद सेकंड आंखें बंद करके, क्या आप एक कामयाब औरत है? क्या आप कामयाब लड़की हैं? आर यू अ सक्सेसफुल वुमेन? आर यू अ सक्सेसफुल गर्ल? इसी तरह ब्रदर्स से कोई पूछे जाके कि बताएं आपको लगता है कि आप खुश हैं? मैंने तो जिसको देखा, और जब से हमारा दुख सुख का ये सिलसिला शुरू हुआ, आज से 5-6 साल हो गए हैं, मुझे लगता है सारी दुनिया दुखी है सिवाय मेरे। अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। हर बंदे को कोई रोग लगा हुआ है। हालांकि अब देखिए, सहाबे कराम और नबी सल्लम के सहाब को देख लीजिए, सादी सी मिसाल थी। वो कहाँ से उठे थे? उनके जिस्मों पे कितने को कीमती कपड़े होते थे। आज एक औरत ने 5 से 10 हज़ार रुपये का जोड़ा पहना हो तो उस वक्त भी दुखी होती है। शौहर बीवी को डायमंड ना सही, चलिए आर्टिफिशियल डायमंड का सेट ले आते हैं, फिर भी मियाँ बीवी की तू-तू में हो जाती है। आपके 3 से 4 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, वक्त पे आपकी बात ही कोई नहीं सुन रहा होता। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है हम दुनिया में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं है, और आखिरत का हसना तो बड़ा क्लियर है, जन्नत और अल्लाह का दीदार। अगर दुनिया में हम हसना पे होते तो आज पूरी दुनिया में नंबर एक बीइंग अ नेशन मुसलमान उम्मत उभरी होती, हमारी धाक होती, हमारा रोब होता, हम इस दुनिया को कुछ करके दिखाते। और आज अगर हम देखें तो जिस तरह हम इनफरादी तौर पे थोड़े परेशान हैं, वैसे इज्तमाही तौर पे भी परेशान हैं। मुल्क में देख लीजिए बेचैनी है, दुनिया में देखिए परेशानी है। ओवरऑल बीइंग अ नेशन लफ्ज़ मुसलमान कोई लोगों के लिए काबिल ज़िक्र लफ्ज़ नहीं है। तो मुझे तो जिस चीज़ ने इस कोर्स को डिज़ाइन करने और आपके मेरे के लिए यहाँ बैठने पे माइल किए, वो क्या है कि हमने इंशाल्लाह इस कोर्स के थ्रू कामयाबी का वो दरवाज़ा खोलना है। पहले तो वो रास्ता ढूंढना है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी, बड़ी बड़ी बातें किताबों में लिखी होती हैं। उस्ताद का काम क्या है कि बड़ी बात को छोटा कर दिखाए। याद रखिए कि उस्ताद इल्म नहीं देता, इल्म की भूख देता है, इल्म की तलब देता है। उस्ताद इज़ अ मोटिवेटर, वो मोटिवेट करता है। और उस्ताद वो होता है जिसके पास बैठकर आपको अपना इल्म थोड़ा लगे। उस्ताद का काम आपके दिमाग में घोल के नहीं डालना होता। मेरा इस वक्त इस पूरे कोर्स में जो आप सबके साथ मामला होगा, वो क्या होगा, हम सब मिलकर सर जोड़कर इधर बैठे, चूँकि समर है और पूरी दुनिया में लोग कुछ हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियों से रिलैक्स रहें, और जो आप में से सिस्टर्स जॉब करती हैं, मैं उन सबको भी दावत दूंगी कि आप तकरीबन 3 घंटे की छुट्टी लीजिए, ये आपका हक बनता है। आप इन वक्तों में जिसमें ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है, आप इसका लोगों के साथ बात करके, क्योंकि इन्ना अलैका हक्कुन, आपने फरमाया तेरा जिस्म का तुझ पे हक है, इन्ना जसद का हक्कुन, इन्ना जूर का हक्कुन, तेरे हमसाए का तुझ पे हक, तेरे मेहमान का तुझ पे हक है। हम बस बस सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या चाहिए। हमारा अपना ज़िंदगी गुजारने का कोई गोल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा इसको तज़किए नफ्स के साथ देखें तो चंद चीज़ें समझाना चाहूँगी। हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस कोर्स को हमने टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन उस्ताद कोई नहीं था। अगर किसी माशरे के उस्तादों को आप ठीक कर दें, और साथ ही साथ खुद ब खुद कुछ साल में, यानी इस साल आप टीचर्स को बेहतर कर लें, तो 2 साल के बाद मीडिया ठीक हो जाएगा। दो बड़े बड़े मला, दो बड़े बड़े किरदार हैं आज के माशरे के, जिनसे हमारी नस्लें मरूब हैं। एक उस्ताद, क्योंकि दिन का एक बड़ा और जो क्रीम टाइम होता है ना, फजर से बाद से लेकर असर के बीच का, जहाँ फ्रेश है, रात को तो बच्चे थके हारे आते हैं घरों में, शुरू का टाइम वो उस्तादों के साथ गुजारते हैं, और घर आने के बाद थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के, फिर ट्यूशनों के बाद शाम को एंटरटेनमेंट के नाम पे वो मीडिया और स्क्रीनों के सामने बैठते हैं। आज के माशरे का बड़ा जिहाद क्या है कि आप उस्ताद की सलाह कर दें, उसके लामुहाला नतीजे में 2 साल के बाद शुरू हो जाएगी, ये मेरा यकीन है, साथ ना भी हुई कि मीडिया ठीक होना शुरू हो जाएगा। आज वो किरदार नहीं नज़र आता जिसको देख कर उसको अपनाने को दिल करे। नबी का उसवा होता है, उस्ताद का कुदवा होता है। ये आप कहते हैं ना, आपके नक्शे कदम पे चलते हैं। आज जो उस्ताद बनकर अपने आप को किसी जगह जिम्मेदारियों के नाम से पेश करता है, उसके पास क्या है? आप कोई इदारा चलाकर देख लीजिए, आप उस किसी स्कूल को रन कीजिए, आपको टीचर्स चाहिए, आपके सामने लोग क्या आते हैं? अपनी सीवी लाते हैं, ये कागज़ का टुकड़ा मसलन, अगर आप देखें कि ये मेरे पास कुछ पेपर्स इधर रखे हैं, मुझे आपसे जॉब चाहिए और आपके इसी इंस्टीट्यूट नूरुल कुरान में मैं आती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे जॉब दीजिए। आप अमूमन मुझसे क्या पूछेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं आपको ये अपनी सीवी पेश करूँगी, ये लीजिए, आप इसमें देखेंगे मैंने क्या पढ़ा, मैंने मास्टर्स किया, मैंने ये किया, मैंने इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा। आप मेरी डिग्री कागज़ों को देखकर मुझे जॉब दे देंगे? अच्छा, इस्लामियत पढ़ी, अच्छा आपने ये किया, आपने वहाँ से पढ़ा, बहुत अच्छी हैं, आप ले लीजिए। होता ऐसा कि नहीं? क्या आज स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, मैं इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं करूँगी कि वो इस्लामिक स्कूल कॉलेजेस हैं या दूसरे हैं, क्योंकि हमारे मासूम बच्चे उन टीचर्स के हाथों में जाते हैं। उन्होंने या साइंस पढ़ानी है या केमिस्ट्री पढ़ानी है, फिज़िक्स पढ़ानी है, उर्दू पढ़ानी है, या उन्होंने बैठकर नाजरा पढ़ाना है। वो खाला जी जो बच्चे को नाजरा पढ़ाती हैं, वो मौलवी साहब जिन्होंने उनको नमाज और अजान सिखानी है, मैं सब की बात अपने समेत करती हूँ। आज हमें वो रोल मॉडल और वो किरदार नहीं नज़र आता जिसको देखकर हमारे बच्चे सुधरे। कागज़ का एक टुकड़ा, यकीन करें, झूठ बोलता है। मैंने इसको प्रैक्टिकली आजमा कर देखा है। हमने अपने इंस्टीट्यूट में कुछ लोगों के सिर्फ सीवीज को देखकर उनको रखा, कभी किसी को हायर नहीं किया। यहाँ हमारे पास 98% चीज़ें वॉलंटियरली चलती हैं, ये भी आपको बता दूं। हमने हायर करके देख लिया क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ और बड़े बड़े इदारों के नाम थे। ऐसा तल्ख तजुर्बा हुआ कि अभी भी याद आ जाए तो वो करेलों का कड़वा पानी दिखता है। तस्किया नहीं है, जो पैसे के लिए आता है वो पैसे के लिए चला जाता है। उसको आपसे 4 पैसे ज़्यादा कोई दिखाएगा वो उधर चला जाएगा, जिसने आपसे वीज़ा लगवाना है वो वीज़ा लगवाएगा तो चला जाएगा, जिसको आपसे सिर्फ कोई जुबानी सहारा चाहिए वो लेगा चला जाएगा। एक शख्स सहरा से उठा, ना उसके पास रिसोर्सेज, ना यूनिवर्सिटियाँ, ना आपकी तरह के ये बड़े हॉल, ना कुर्सियाँ, ना मेज़, ना एसी लगे, ना कारपेट इतना जो कुछ हमारी आंखों ने पिछले चंद दिन में देखा है। अल्लाह के नबी तो इसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ से एक ऐसा बैच तैयार हुआ कि जिसने पूरी दुनिया की शख्सियत बदल दी। ये गोल लेकर आपके पास बैठी हूँ। इस दीनों दुनिया कोर्स में से ऐसे उस्ताद निकलेंगे, ऐसे उस्ताद निकलेंगे जिनके हाथों में बच्चों को देकर माँ बाप मुतमईन हो जाएं, वरना मेरा तो बच्चा मैं तो कभी स्कूल में ना भेजूँ। मैं टीचर की सीवी कभी नहीं देखूँगी, मैं पहले उसको सर से पांव तक देखूंगी, फिर मैं उस टीचर का इंटरव्यू करूंगी कि इस टीचर का जहनी लेवल शुक्रगुजारी का कि ना शुक्री का। फिर मैं देखूंगी कि ये टीचर दुनियादार है कि दीनदार है। आप मेरे पास आए, मैं किसी इदारे की हेड बन जाऊँ, मेरा नहीं हल मैं किसी को भी हायर करूँ अपने समेत। याद रखिए, आप अपने बच्चे को किसी ऐसे शख्स के हाथ में देंगे जिसके दिल में कीना हो, हसद हो, बोगस हो। हम इसमें 30 टॉपिक्स पढ़ेंगे तज़किया के, यानी सिर्फ इस एक कोर्स में हमने कल से, यानी कल जिस पे सारा वक्त बात होनी है इस पारे के अंदर से, वो हसद है। मैं अपने बच्चे को ऐसे स्कूल भेजूं जिस टीचर के दिल में हसद है, वो साथ काम करने वालियों से हसद करे, वो अपने सीनियर से हसद करे, कुलीग से हसद करे, मेरे बच्चे को वो क्या सिखाएगी मुझे बताइए? और बच्चियाँ, वो बच्चियाँ जो दुनियावी तालीम, मैं सिर्फ टीचर से नहीं मुखातिब, आज अगर आप स्टूडेंट बन के दुनिया में अपना कदम रखने ही लगी हैं ना, तो याद रखिए अपना तस्किया कर लीजिए। ये आपको इस बुक के पूरे इंडेक्स पे ये सब टॉपिक, मैं सिर्फ बोल देती हूँ चले, आपको शौक़ तो बढ़ेगा ना कि हम पढ़ेंगे क्या। इस दीनों दुनिया कोर्स के 31 डेज़ हैं, जिसमें एक आज का तो गुजर जाएगा ना, ये तो आज तो हल्का फुल्का सेशन है, आज के दिन पर कल को क्यास ना कीजिएगा। हम हसद पे, सब्र पे, बुखल पे, गुस्से पे, ख़यानत पे, जाहिलियत पे, सच पे, अना पे, तकब्बुर पे, दिखावा, तौबा, हया, नफ्स की शरारतें, लंबी आरजुएं, फितनों के आगे बंद कैसे बांधा जाए, तकदीर को मान जाओ उससे झगड़ो नहीं, यानी तकदीर पे ईमान पे, गफलत पे, जिना पे, अदब पे, दुआ पे, शुक्र पे, तकवा पे, इखलास पे, झूठ पे, मशवरे की अहमियत दुनिया या आखरत दोनों के एतबार से, हफ्ते आमाल पे, इसराफ पे, तवक्कुल पे, और दावत इल्लाह पे, और तज़किया नफ्स के मराहिल पे बात करेंगे। ये मैंने आपको 30 दिन का प्लानर बोल दिया। तरीक़ाकार क्या होगा? हर दिन का एक पारा, 30 दिन अगर आपने एक एक करके ये टॉपिक पढ़ लिया तो क्या आपका मेरा अल्लाह अकबर तज़किया नहीं होगा? होगा ना? दुआ करते हैं कि हो। इरादा है कि अल्लाह ताला ये करवा ले, नियत है, इरादा है। अंदर बाहर से मांझे जाने का ये कोर्स है। मुझे तो अब अपने लिए तो नामुमकिन है, ऐसी बात हम करें क्यों कि मैं फिर छोटी हो जाऊं, फिर मेरी ज़िंदगी का एक वक्त शुरू हो और मैं अपनी इन आदतों पे काम करूं, फिर मैं इन बातों को इधर कर दूं, उधर कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो उसके बाद फिर मेरी इस्लाह हो जाए। लेकिन जो बच्चियां आप 10 12 साल की हैं, आप सब माओं को कहूँगी, अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी, अल्लाह ने एक बार फिर अपना आप दिखा दिया, अल्लाह के फरिश्ते आए कि कौन आए कि आपके लिए ये सब तैयारियां हो गई, अल्लाह अपना काम करके फारिग है, उसने हुज्जत तमाम कर दी है। अब मेरे और आपके नसीब की बात है। अपनी यंग बच्चियां 10 12 साल की बच्चियों को लेकर यहाँ आकर अपने आप को इस कुरान और सुन्नत के पानी से रंगना मेरा और आपका काम है। जितनी कोशिश, जितनी नियत, जितना इरादा करेंगे काम हो जाएगा।